हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अरहम ठाकुर अपनी माँ का गजाला जी के साथ अरमान ठाकुर के मेंशन में पहुँच चुका था, और जैसे ही गजाला जी ने अरमान ठाकुर के मेंशन को देखा, उसका खूबसूरत सा गार्डन देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो तो समझ रही थी कि अबीर सिंह राठौर से ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अरमान ठाकुर को देखकर ठाट बाट और रहने का तरीका देखने के बाद गजाला जी को अफसोस होने लगा था कि उसने आखिर इतने दिन क्यों लगा दिया अपने बच्चों से मिलने में। क्योंकि अरमान ठाकुर शहर का नंबर वन आदमी था, जिसे हर कोई जानता था। वो उसके शहर का नंबर वन रिचेस्ट आदमी था। गजाला जी जैसे ही अरहम ठाकुर के साथ अभी मेंशन के अंदर गई, तो वो चारों ओर से अबीर राठौर के बहुत ही खूबसूरत बंगले को देखती रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई के उसके बेटे का घर है, क्योंकि अरमान ठाकुर का नीचे का हॉल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और जैसे ही मेहर ठाकुर ने अरहम ठाकुर के साथ गजाला जी को देखा, तो वो हैरान रह गई थी। अपनी माँ को पहचानने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी, और एक झटके में ही उसने अपनी माँ को पहचान लिया था। और फिर गुस्से से उनकी ओर बढ़ी थी और अरहम से बोली थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को यहाँ लेकर आने के, तो जानता भी है कौन है ये। तब अरहम ठाकुर अपनी बहन को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहर का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब गजाला जी आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथ अपनी बेटी के सामने जोड़ लिए थे और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी थी। हालांकि उनके दिल से ऐसी कोई माफ़ी नहीं निकल रही थी, वो सिर्फ दिखावा कर रही थी, क्योंकि उसे वक्त वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे शुरू से ही लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जिसके चलते उन्होंने अरमान के पिता अशरफ अली को धोखा दिया था, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और अब जैसे जैसे उनका जिस्म बूढ़ा हो रहा था, तो उन्हें शिद्दत से अपने बच्चों की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे अगर वो बूढ़िया हो जाएंगे तो पैसा उनकी देखभाल नहीं कर सकता है। इसीलिए वो अब इस लग्जरी लाइफ के साथ साथ अपने बच्चों का साथ भी चाहती थी। इसीलिए वो मेहर के सामने झुकने से एक पल के लिए भी नहीं सकपकाई थी। जब मेहर ने अपनी माँ को रोते देखा और माफ़ी मांगते हुए देखा, तो वो तो बेटी थी, तो वो ज़्यादा देर अपनी माँ को इस तरह से नहीं देख पाई थी, और उसने भी गजाला जी को गले से लगा लिया था। और कितनी देर तक दोनों माँ बेटी रोती रही थीं। हालांकि गजाला जी को ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं माँ के इमोशन तो थे ही, तो इसीलिए गजाला की कितनी ही देर तक मेहर के साथ गले लगाकर रोती रही थीं। उन दोनों अरहम ठाकुर भी उन दोनों माँ बेटी को नम आँखों से देख रहा था और फिर बोला था, अच्छा मेहराबी, भाई कहाँ है? तब मेहर ने अरमान के कमरे की ओर इशारा कर दिया था और कहा था कि वो अपने कमरे में है, जो कि रात हो गई थी, तो इसीलिए अरहम ठाकुर जल्दी ने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसका भाई सो गया हो। लेकिन जो कुछ भी आज उसकी कंपनी में हुआ था, तो उसके बाद अरहम ठाकुर को पूरा यकीन था कि उसका भाई बिल्कुल नहीं सोया होगा, इसीलिए वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। तब अरहम ठाकुर के पास दरवाजे की मास्टर की थी, तो इसीलिए उसने उसका इस्तेमाल किया और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि पूरा का पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, लेकिन वहाँ पर अरमान ठाकुर का नामोनिशान नहीं था। अरमान ठाकुर नहीं था। जैसे ही अरहम ने ये देखा कि अरमान अपने कमरे में नहीं है, तो उसका मन को अंदेशों ने घेर लिया था। उसे अब कुछ अनहोनी की आशंकाएं नजर आने लगी थीं, और जल्दी ही वो मेहर के पास लौट कर आया था और बोला था, भाई अपने कमरे में नहीं है, और मुझे पूरे यकीन है कि वो इस वक्त कहाँ गए होंगे। तब अरहम ठाकुर ने मेहर से कहा था कि आप ही आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ है, आप उसकी पूरी डिटेल्स मुझे पकड़ा दें और मीटिंग में कौन कौन शामिल थे उन सबके नंबर मुझे दे दें। अब मैं इस मैटर को देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तब मेहर ने हाँ में सर हिला दिया था और जल्दी उसने पूरी डिटेल्स अरहम ठाकुर को दे दी थी, और फिर उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि इतने सालों के बाद उसे उसकी माँ मिली थी, तो वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ठाकुर ने पता लगा लिया था कि ज़ोया किस होटल में ठहरी हुई है, इसीलिए वो चीफ सिक्योरिटी को चकमा देकर ज़ोया के होटल के कमरे में पहुँच चुका था। लेकिन क्योंकि अरमान ठाकुर की जो आज इंसल्ट हुई थी, रह रहकर उसे वो याद आ रही थी, वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, और ऊपर से जबकि ज़ोया उसके सामने थी, जिसे उसने कितने ही सालों महीनों से इंतज़ार किया था, वो इस तरह से उसे नहीं छोड़ सकता था, किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। अरमान ठाकुर ने डिसाइड कर लिया था कि अगर ज़ोया ने अपने नाम के आगे अबीर सिंह राठौर लगा लिया तो क्या हुआ, रहेगी तो वो अरमान ठाकुर की है, क्योंकि उस पर, उसके जिस्म पर, उसके सांसों पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हक था तो वो है अरमान ठाकुर। अमन ठाकुर ने बड़ी बेशर्मी से सोचा था, और जल्दी ही वो होटल में ज़ोया के कमरे में पहुँच चुका था। ज़ोया उस वक्त कमरे में नहीं थे। ज़ोया उस वक्त लंच करने के लिए चांदनी और राजा के जोर देने पर नीचे डिनर करने के लिए नीचे गई हुई थी, क्योंकि चांदनी और राजा ने ज़ोया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाए थे, तो इसीलिए उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो नीचे आकर ही खाना खाए, तो ज़ोया उनके इसरार को ना नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए वो नीचे चली गई थी, और इसी बात का फ़ायदा अरमान ठाकुर ने उठा लिया था, क्योंकि सिक्योरिटी तो अब जोया के साथ ही थी, तो उसके कमरे की सिक्योरिटी अब ज्यादा नहीं थी। इसीलिए वेटा के वेश में अरमान ठाकुर जोया के कमरे में एंट्री कर चुका था। वहीं चांदनी और राजा ने जोया के लिए बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट करवाया था, साथ साथ धीमा सा म्यूजिक प्ले करवाया था, जिससे जोया को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। साथ ही साथ उसे अकेले होने का एहसास भी हो रहा था, क्योंकि रह रहकर जोया को अबीर सिंह राठौर की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। वेल, जल्दी ही राजा और चांदनी को भी अपने साथ खाना खाने के लिए बिठा लिया था और जल्दी ही उन तीनों ने एक साथ खाना फिनिश किया था। उसके बाद जोया ने उन दोनों से कहा था कि वो आज काफी थक गई है, तो वो अपने कमरे में जाकर आराम करेंगी। चांदनी ने हाँ में सर हिला दिया था और जल्दी ही वो जोया को उसके कमरे तक छोड़कर वापस राजा के साथ चली गई थी। राजा और चांदनी ने डिसाइड किया था जब तक जोया इस होटल में रहेगी तो वो लोग भी यहीं रहेंगे, क्योंकि वो जोया की खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और ना जाने कब जोया को किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए वो लोग पर्सनली उस चीज को देखना चाहते थे। वेल, जोया जैसे ही अपने कमरे में गई उसे कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि अगर कमरा खाली हो और उसमें कोई ना हो और अचानक से किसी के होने का एहसास हो तो इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जोया अब काफी ज्यादा शार्प और तेज और चालाक हो चुकी थी। उसे एहसास हो गया था उसके कमरे में कोई है, लेकिन फिर उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। इसीलिए जोया, जो कि खाने के बाद सबसे पहले कपड़े चेंज किया करती थी सोने के लिए,
लेकिन उसने आज ऐसा नहीं किया था। उल्टा उसने थोड़े कपड़े और पहन लिए थे, क्योंकि उसने वेस्टर्न वियर का लॉन्ग सूट पहना था, लेकिन अब उसने कुछ इस टाइप के कैजुअल कपड़े पहने थे, जैसे लाइक टी शर्ट, लोवर, इस टाइप के उसके कपड़े डाल लिए थे, जिसमें उसके शरीर का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ही कैजुअल, एकदम कॉलेज जाने वाली लड़कियों की तरह लग रही थी। काफी ज्यादा सिंपल लुक पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जोया ने कपड़े अपने चेंज करने के बाद वो बेड पर लेट गई थी। उसे उसने इरादा किया कि क्यों ना एक बार वीडियो कॉल करके अबीर सिंह राठौर और बाकी सबसे बात कर ली जाए, लेकिन कुछ सोचकर उसने उन्हें कॉल नहीं की थी और जल्दी ही कोया पेड़ पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी थी। हालांकि उसे अब उसकी फीलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन जब तक उसके सामने नहीं आएगा जोया खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहती थी, जो अच्छी तरह से जानती थी अगर उसने उसे ढूंढने की कोशिश की तो पक्का वो और ज्यादा छुपाने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आराम से लेटी रहूं, अगर कोई होगा तो अपने आप सामने आएगा, वैसे मेरे कमरे में से उसे क्या मिलेगा। कल अभी कुछ देर हुई थी कि तभी जोया को अपने बराबर में किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक से जोया ने अपने कमरे की लाइट जला दी और लाइट जलाते ही उसके सामने जो चेहरा था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी।